ओम शांति
ओम शांति।
आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए भी और वर्तमान में भी जो जीवन में परिस्थितियां, छोटी मोटी बीमारियां या किसी का दुर्व्यवहार या काम धंधों में ऊपर नीचे होना, इन सब में स्थिति को अचल अडोल रखना बहुत आवश्यक होता है। तो ये टॉपिक तो सदा के लिए ही बहुत सुंदर है कि हम एक के बल पर जिए, हमारा उस पर पूरा भरोसा हो। इसका सिंपल सिंपल अर्थ है, बाबा पर हमारा पूरा भरोसा हो और उसके बल पर हम निश्चिंत जीवन जीना सीखें। क्योंकि जीवन में चिंताएं भी होती हैं और आजकल बहुत लोगों को एक चीज हो रही है कि बहुत सोचने की आदत, कोई छोटी मोटी बात भी आ गई जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन उस पे बहुत चिंता करना, उस पे बहुत सोचना, या कोई निगेटिव थॉट आ गया तो वो चलता ही रहना, बार बार रिपीट होना मन में सवेरे से रात तक, उसको कंट्रोल ही न कर पाना, ये समस्या बहुतों के जीवन में बढ़ती जा रही है। तो हमें अपने को भी बहुत पावरफुल बनाना होता है। देखिए, दो बातें हैं बाबा की, वो ये चाहते हैं कि चाहे तो हम बहुत पावरफुल बन जाएं, इतने पावरफुल कि हमें किसी की मदद की जरूरत ही न पड़े, अथवा इसी को दूसरे शब्दों में कहें, हम इतने पावरफुल बन जाएं कि अनेक आत्माएं हमें मदद करने के लिए स्वतः ही खिंचन कराने लगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम बाबा की शक्तियों को जानते हुए, उसमें विश्वास रखते हुए, उसकी कार्य करने की विधि को समझते हुए अचल अडोल स्थिति बनाएं, उसके बल पर जिए। सबसे अच्छा उदाहरण इस बारे में ब्रह्मा बाबा का है। शुरू से लेकर जब यज्ञ की स्थापना हुई, अनेक लोगों ने विरोध किया, साथ देने वाले तो बहुत थोड़े थे, वो भी छोटे बच्चे थे, माताएं थी, कोई पावरफुल पुरुष बाबा के साथ उस समय नहीं था, चारों ओर विरोध की लहर थी, क्योंकि अनेक घरों से बहने माताएं भाग भाग कर आ रही थी बाबा के पास, तो चारों ओर आवाज फैल गई थी और शक्तिशाली लोग ऐसा न करने देना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पर इतना विश्वास था कि ये कार्य उसने शुरू किया है, ये कार्य उसका है, वो सब कुछ आप ही ठीक कर लेगा, तो अचल अडोल रहे। दूसरी परीक्षा आई बाबा के सामने बैगरी पाठ की। देखिए, ये ऐसी परीक्षा थी कि इसमें जो आम बाबा के बच्चे उन दिनों वहां थे, उनको तो कोई चिंता थी नहीं, भोजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है, किराया देने को पैसा नहीं है, या कोई सुख सुविधा नहीं है, ठंड बहुत पड़ती है, गर्म कपड़े नहीं है, उनको तो इतना ही होता था। लेकिन बाबा क्योंकि जिम्मेदार थे तो सब कुछ बाबा के ऊपर आता था। लेकिन बाबा ने कभी ही शायद सोचा हो कि शाम के भोजन का क्या होगा, कल कहाँ से खाएंगे, ऐसी स्थिति थी कि आज है, कल का कुछ पता नहीं है, हमारे घर में ऐसा हो जाए या हम अकेले भी हों तो भी कितनी दुविधा हो जाए। लेकिन बाबा, ये बाबा के साथ 380 भाई बहने, आज खा लिया है खाना, कल खाएंगे या नहीं खाएंगे किसी को पता नहीं, लेकिन शिव बाबा पर इतना विश्वास था कि सब उसके बच्चे हैं, वो सबको खिलाएगा, उसने कहा है मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। तो इस विश्वास की परीक्षा भी बहुत हुई। हमारे विश्वास की परीक्षा अवश्य होती है। बाबा हमारा कार्य करते हैं, उनकी कार्य करने की विधि अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा 2-3 साल पहले बॉम्बे में एक ऊंची बिल्डिंग जो कुछ समय पहले ही बनी थी गिर गई थी। जब वो बिल्डिंग बन रही थी और उसमें मकानों की बुकिंग हो रही थी, तो एक भाई को बहुत इच्छा थी मुझे भी एक 3 BHK इसमें मिल जाए। उसने मेरे से पूछा, उसको बाबा में बहुत निश्चय था, वो 2-2.5 साल से ज्ञान में था कि मुझे ये बिल्डिंग मिल जाए, मुझे फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद, मैंने जो विधि बताई थी वो सब उनने सच्चे दिल से की, उसके बाद भी उसका नंबर नहीं लगा। वो बाबा से इतना नाराज हुआ कि उसने बाबा को ही छोड़ दिया। बाबा मेरी नहीं सुनता, हमारा गुरु ही अच्छा था, सुनता था। और उसके 4-5 मास बाद ही वो बिल्डिंग गिरी थी, तो वो फिर भागा भागा सेंटर पर आया, अपनी भूल स्वीकार की। मैं तो बाबा को गाली देता रहा, बाबा से असंतुष्ट रहा, लेकिन बाबा ने मुझे बचा लिया। मेरे इतने लाखों रुपए बचा लिए, बॉम्बे में तो करोड़ों में आता है ना फ्लैट। तो बाबा की कार्य करने की विधि हम नहीं समझ सकते, हमारा लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड बुद्धि है। जैसे आपका एक बच्चा जिसको आप बड़े प्यार से आइसक्रीम खिलाते हैं, वो बहुत अच्छी कोई विशेष आइसक्रीम का शौकीन है, आज उसका गला खराब है, आज उसको थोड़ा कफ हो रहा, थोड़ा बुखार हो गया, अब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, रास्ते में वही आइसक्रीम की दुकान बढ़ती है, वो जिद करता है मुझे आइसक्रीम खानी है, आप उसे नहीं खिलाएंगे? यही तो प्यार है ना बच्चे से, खिला देना प्यार नहीं होगा, न खिलाना प्यार है। क्योंकि आप जानते हैं कि आइसक्रीम खिलाने से इसकी बीमारी बहुत बढ़ जाएंगी और मुश्किलात होगी। बाबा भी जानता है हमारा कल्याण किसमें है। तो कभी कभी हम बाबा को न पहचानने के कारण तत्कालीन अपना लाभ देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबा बेहद की दृष्टि वाला है, वो हमारे आदि मध्यंत को जानते हुए हमारे लिए जो भी कल्याणकारी है वो करता रहता है। तो अपना जीवन हमें बाबा को पूरी तरह सौंप देना है, हमें समझ लेना है कि वो हमें साथ दे रहा है और उसकी शक्तियों से बाहर कुछ भी नहीं है। वो चुटकी बजा दे तो सागर सूख सकते हैं, वो चुटकी बजा दे तो ये नर्क स्वर्ग में बदल सकता है। ऑल माइटी ऑल पावरफुल है, संपूर्ण सत्ता उसके हाथ में है और वो हमारा साथी है। अगर हमें ये अवेयरनेस हो, ये नशा हो, इसकी अनुभूति हो जाए, तो हम अचल अडोल रहेंगे उसके भरोसे पर, ऐसे स्थिर हो जाएंगे कि कहीं भी हम डोलेंगे नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण की कहानियां इसके बारे में अनेक उदाहरण पेश करती हैं। श्री कृष्ण पांडवों के साथ है, अर्जुन को ये पहले ही पता है कि जिधर वासुदेव है उधर ही विजय है, लेकिन पांडवों को भी काफी लोस होता है, उनके भी अनेक महारथी सेनापति मारे जाते हैं, अनेक जो उन्हें मदद करने आए राजा वो मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका ये विश्वास खत्म नहीं होता कि वासुदेव के होते हुए ये हमें हानि क्यों हो रही है। तो हम इस बात को ध्यान में रखें, बाबा की जो बहुत गुह्य बातें हैं आप सबने सुनी हैं, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, न मैं रहेगा, न मेरे रहेंगे, न मेरा रहेगा। ये सब जानते हुए हमें आने वाले समय की बहुत अच्छी तैयारी करनी है कि जब सब कुछ जाने लगे हम उसे जाता देखें और बाबा पर पूर्ण विश्वास रखें कि सब कुछ हमारे लिए कल्याणकारी है। यदि हम ये सोचेंगे कि बाबा हमारा साथी है पर हमारा विनाश क्यों हो रहा है, हमारे परिवार का विनाश क्यों हो रहा है, हमारी संपत्ति हमारे धंधे क्यों नष्ट हो रहे हैं, तो बाबा भी छूट जाएगा और ये सब तो बचेगा नहीं, क्योंकि जो इन आंखों से दिखता है वो सब कुछ नहीं दिखेगा। तो ज्ञान को भी बहुत गुह्यता से समझते चलें, बाबा की शक्तियों को भी बहुत गुह्यता से समझते चलें और ये भी समझते चलें कि वो हमें कैसे साथ दे रहा है, उसका वायदा है साथ देने का, साथ निभाने का। लेकिन परीक्षा के समय टीचर मदद नहीं कर सकता। परीक्षाओं को पार करने की सारी विधि, शक्तियां, सिद्धियां उसने हमें दे दी हैं। अब परीक्षा के समय तो वो साक्षी होकर देखेगा कि मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं और कितनी तैयारी है उनकी। तो हम बाबा को जानकर अटल अडोल हो जाएं, बाबा के भरोसे जीवन जिएं, ये याद रखें बाबा हमारे लिए पूर्ण कल्याणकारी है, उसके होते हमारा कल्याण हो नहीं सकता। कुछ हमें ऐसा वैसा दिखाई भी दे, उसके पीछे भी कल्याण समाया होता है। बहुत पहले बाबा की ये बातें चलती थी कि अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, तुम पर्दा हटाओ और देखो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए केवल वर्तमान को न देखते हुए हम दूर दृष्टि धारण करें, दिव्य दृष्टि धारण करें और आगे बढ़ें। प्यार का मास आप लोगों ने मना लिया है, फरवरी प्यार का मास। बाबा की मुरली में बहुत स्पष्ट आता है, जो जितना देह से न्यारे वो उतने ही बाबा के प्यारे, विश्व के प्यारे। परमात्म प्यार पाने के लिए या हमारे चित्त में उसके लिए पूरा प्यार भर जाए, इसके लिए हमें देह से न्यारे होने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सोल कॉन्शियसनेस पे क्लासेज हो चुकी हैं, इस बात में भी वो आपने सुन ही ली होंगी, लेकिन बिल्कुल ये देह अलग है और मैं अलग हूँ। जैसा ये देह है वैसे अनेक देह मैंने लिए हैं और छोड़े हैं, ये बहुत सुंदर अनुभूति हम करते चले। इससे आत्मा के सातों गुण भी जागृत होते जाएंगे, जीवन में धारण होंगे और बॉडी से डिटैच होने के कारण हम विकारों से भी मुक्त होते जाएंगे और बाबा के प्रति प्यार भी बहुत बढ़ता चलेगा। तो उससे रूढ़िहान करें, उसको शुक्रिया दें, उसने हमें क्या क्या दिया है, उसके प्यार का स्वरूप क्या है, ये भी आप चर्चा कर लेना आपस में। देखिए वो ये तो नहीं कि हमें रोज गले से लगाएगा, अब हम बड़े हो गए, ऐसे तो नहीं वो हमें पुचकारेगा। सत्य राह दिखाना उसके प्यार की निशानी है, ठीक समय पे मदद कर देना, हमें बचा लेना उसके प्यार की निशानी है, हमें भटकन से छुड़ा देना, हमें संपूर्ण सत्य राह दिखा देना उसके प्यार की निशानी है। रोज वो हमें सवेरे जगा देता है, ये उसके प्यार की निशानी है कि आओ मेरे पास, मुझे तुम्हें वरदान देने हैं, तुम्हारे लिए मैंने वरदान रखे हैं, आ जाओ। इतना बड़ा प्यार है ये उसका, जब भी बुलाएं वो आने को तैयार है, ये उसके प्यार की निशानी है। तो हमें उसका बहुत प्यार मिल रहा है। जब वो हमारे बीच में आता है, आता था तो ऐसे आता था जैसे अपने परिवार में आया है, अपने महान बच्चों के बीच में आया है, अपने उन आत्माओं के बीच में आया है जो उसके बहुत अधिक सहयोगी हैं, जो विश्व कल्याण करेंगे, जो इस संसार को पावन बनाएंगे। तो बहुत प्यार से बैठते थे बाबा, बहुत उमंग से बैठते थे बाबा, बहुत ऊंची दृष्टि रखते हुए रहते थे हमारे बीच में बाबा। तो इसके प्यार का हम रिटर्न देंगे, हमारा भी उससे प्यार ये नहीं कि हम उसे गले ही लगाते रहें, हमारा उससे बहुत प्यार है। इसका रिटर्न है कि जैसे उसने सबकी पालना की, हम भी सबकी पालना करें। जैसे वो सवेरे हमें रोज पढ़ाने आता है, हम पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें। उसने यज्ञ रच कर हमारे हाथों में दे दिया है, हम इस यज्ञ को निर्विघ्न बनाएं, इस यज्ञ की वृद्धि करें। तो उसके कार्य करना, उसके आज्ञाओं पर चलना, यही हमारा प्यार है, उसके लिए हम रोज समर्पित करें। समाप्ति वर्ष बाबा ने इस वर्ष को कह दिया है ईयर ऑफ कम्प्लीशन। सीधा सा अर्थ यही है कि जो कुछ हम करना चाहते हो वो कर लें। हर एक का लक्ष्य अलग अलग होता है, मैं सबके लिए एक ही बात नहीं कहूंगा, हर एक का लक्ष्य अलग अलग है। जो भी आपने अपने संगम युगी जीवन का टारगेट बनाया हो, जो भी पुरुषार्थ आप करना चाहते हो, जो भी अनुभव आप अपने में लाना चाहते हो, उसको लक्ष्य बनाकर उसकी एक सुंदर प्लानिंग करें। जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें, और ये भी सत्य है कि इस समय जो कुछ हम सच्चे मन से करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, क्योंकि जब इस समय को बाबा ने वरदान दिया है तो वो मदद बहुत करेगा। बाबा ने कह दिया था कि जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करेंगे उनके साथ बाबा का वरदान होगा और बहुत मदद होगी। ये मैं तो बहुत अनुभव कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे, करते रहें। किसी का लक्ष्य होता है, मैं लक्ष्य के बारे में थोड़ा कुछ कह दूं आपको। किसी का लक्ष्य होता है मुझे संपूर्ण पवित्र बन जाना है, किसी का लक्ष्य होता है मुझे अपने जीवन को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त कर लेना है, किसी का लक्ष्य होता है मुझे इतना घंटा योग युक्त रहना है, किसी का लक्ष्य अब छोटे छोटे लक्ष्य मुझे सदा खुश रहना है, ये भी लक्ष्य रहते हैं, मुझे सभी को सुख देना है, ये भी लक्ष्य रहता है। तो अपने लक्ष्य को निश्चित करें सभी और उसके अनुसार एक सुंदर प्लानिंग करें। बहुत जरूरी है आने वाले समय की तैयारी के लिए अपने को बहुत हल्का करना। अब हमारा जीवन का सफर इस तरह का हो कि हमारे सिर पर कोई बोझ नहीं है, हम बहुत सरल चित, हम बहुत आनंदित, हम खुशियों से भरपूर, कोई बोझ उठाकर यात्रा नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से मुक्त होकर तेजी से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबने प्लान बनाया भी होगा और बनाते रहें, क्योंकि आने वाला समय हम सभी से बहुत कुछ डिमांड करेगा। मैं तो अपने को याद दिलाता हूँ रोज रोज सवेरे शाम, तुम्हें ये काम करना है कुछ समय के बाद, उसकी तैयारी कर लो, अपने को भरपूर कर लो, देने का समय आ रहा है, सारा संसार प्यासी नजरों से हमारी ओर देखेगा। तो ये सुंदर समय अलबेलेपन में न बीते, व्यर्थ में न बीते, टाइम को सफल करते हुए, अपने संकल्पों को महान बनाते हुए हम इस सुंदर समय को व्यतीत करें। तो आप अपना प्लान बनाएं और अच्छा साथ करें। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही आप लोग करते रहे बहुत खुशी की बात है, और आगे बढ़ते रहे। ओम शांति। हाँ हाँ पूछ लो, मैं एक सेकंड में आ जरा, पानी पी के मेरे पास कोई है नहीं है, आप प्रश्न तैयार करें और मैं।
ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न है भाई साहब से पूछने के लिए? और किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ ठीक है,
कर लेंगे फिर आगे से कुछ, इसको बड़ा कर ले तो चलेगा ना, कल आगे जब करेंगे। यस बोलो, किसको प्रश्न पूछना है भाई?
ओम शांति। ओम शांति भाई साहब।
ओम शांति
भाई साहब। अब बहुत पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अगर शरीर साथ न देता हो, शरीर का कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर उसको कैसे हम ओवरकम करें और पुरुषार्थ के आगे बढ़ते रहे?
देखिए, शरीर अगर अच्छा नहीं है तो मनुष्य का पुरुषार्थ निश्चित होता है। शरीर का हेल्दी होना हेल्दी पुरुषार्थ के लिए जरूरी है। इसके लिए योग अभ्यास तो हमें मदद करेगा, बहुत खुश रहना भी मदद करेगा, पॉजिटिव होकर हम रहें ये भी बहुत बड़ी मदद होगी, लेकिन विशेष रूप से इसका इलाज भी कर लेना चाहिए। जो भी जिसको बीमारी हो, चाहे आप आयुर्वेदिक करें, एलोपैथी करें, होम्योपैथी करें, नेचर क्योर करें, किसी भी तरह से अपने को हेल्दी रखना आवश्यक है। और थोड़ा खाने पर बहुत अच्छा कंट्रोल हम सबका होना ही चाहिए, उसका जरूर इलाज कराएं और अपने को हेल्दी करें।
अंतिम समय में जैसे चारों ओर से घिर के आएंगी परिस्थितियाँ, अभी ऐसे ही हो रहा है, माया इधर खींच रही है, बाबा यानी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत बंधन में बंध गई हूँ, अब कैसे करें? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि योग में एकाग्रता नहीं हो रही है।
देखिए, ये जो आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं ये तो चिंती के समान है, परिस्थितियां तो अभी बहुत आने वाली हैं, इसलिए डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन बाबा ने जो कुछ बताया है वो यही है कि वर्तमान की तुम्हारी बातें तो बहुत छोटी हैं, चारों ओर से घिर जाएगा मनुष्य। आज ही किसी से हमारी चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा कि सीनियर्स हम लोगों पे ध्यान नहीं देते, वो हमारी केयर ही नहीं करते, बीमार होते हैं तो हमें कोई पूछता नहीं। मैंने उन्हें कहा सीनियर भी तो सोचते होंगे हमें भी कोई पूछता नहीं, उन्हें कौन पूछे, उनके जो सीनियर है वो भी तो सोचेंगे हमें भी कोई पूछता नहीं क्या करें। आने वाला समय ऐसा है, बहुत ही एक गहरी बात है और बाबा के द्वारा बताई गई है, हर व्यक्ति संसार में अकेला हो जाएगा, उसका योग बल, उसके पुण्य कर्म, उसकी अपनी स्थिति, जो उसने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया, ये सब मिलके उसको मदद करेंगे। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ। कुछ अच्छे थॉट्स सवेरे उठकर ही आप क्रिएट किया करें, पांच पांच बार कम से कम, और परिस्थितियों को परिस्थिति न बनने दे, न माने। देखिए मानने की बात है, एक व्यक्ति जा रहा है, ठोकर लगती है, गिर जाता है, उसकी हड्डी टूटती है पैर की, उस पर प्लास्टर लगता है, उसको कहा जाता है एक माह सब तुम्हें बेड रेस्ट होगा, व्हील चेयर पे तुम रहोगे। अगर वो बहुत सोचता है तो वो दुखी हो जाएगा, बाबा से भी नाराज होगा, क्यों तुमने मदद नहीं की, क्यों मुझे गिराया है, बाबा को कहेगा जैसे बाबा ने गिराया उसको। और दूसरा व्यक्ति है वो सोचेगा चलो बहुत बिजी रहते थे, थोड़ा शांति का आराम का समय मिला, अब अच्छा योग करते हैं, व्यक्त मूल्यों की स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी अपनी स्थिति को बना लेंगे एक मास में। तो परिस्थितियों को परिस्थिति समझना, बड़ी समझना, ये गलत है। हम इसको ठीक करेंगे, थोड़ा बहुत लाइट रहेंगे और बाबा का ये महावाक्य भी याद रखेंगे, तुम सरल चित्त होंगे तो सारी परिस्थितियां भी सरल हो जाएंगी।
में विश्व कल्याण का टीकादार ऐसा टाइटल दिए है, तो उसके ऊपर खास विशेष करते भी है, पर जब देखा जाता है चारों तरफ या सुनने में जो आता है, और ब्राह्मणों की संख्या इतना भी बढ़ रही है, शुभ भावनाएं भी बढ़ा रहे हैं सभी, पर विश्व में जो देखा जाता है बहुत दिन प्रतिदिन जो भविष्यवाणी सुनाए, यहाँ वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी कहो या नास्टरडामस, उन्होंने जो सुनाया उससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां अभी देखने में आती है। तो हमारी शुभ भावना, शुभ कल्याणकारी भावना इतना कैसे बढ़ावे, जो समाचार से भी हमको ये पता चले कि बहुत सुंदर रूप से सृष्टि परिवर्तन की पॉजिटिव की तरफ मोड़ रही है।
या ये बाबा जो कह रहे थे वो ये, तुम विश्व कल्याण के ठेकेदार, यानी इतना बड़ा काम तुमने लिया है और तुम छोटी छोटी बातों में उलझते हो, ये गलत हो गया। जिनको बड़े काम होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, यानी इससे ऊपर उठ जाओ। विश्व कल्याण के लिए केवल विश्व कल्याणकारी भावना काफी नहीं होगी, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, कितना हमारा योग है, कितनी श्रेष्ठ हमारी मन की स्थिति है, धारणाएं कितनी श्रेष्ठ है। मैं प्योरिटी के लिए थोड़ी सी बात आपको कहूं, पवित्र आत्माएं तो ब्राह्मणों में बहुत बन गए हैं, कुछ नहीं बने लेकिन बहुत तो बन गए, लेकिन पवित्रता का बल बहुत थोड़े लोगों के पास है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो पवित्र है, उसकी कर्मेंद्रियां भी शीतल हो गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं उसके पास पवित्रता का बल भी हो। पवित्रता का बल कहाँ जाता है और ये कैसे बढ़ेगा? मान लो हमें ईर्ष्या द्वेष है, हम व्यर्थ सोचते रहते हैं, हम कुछ व्यर्थ देखने में लगे हुए हैं, तो पवित्रता का बल क्षीण होता जाएगा। लेकिन जो पवित्रता के स्वमान में रहते हैं, जो साधारण संकल्पों से भी ऊपर महान संकल्पों में रहते हैं, जो बहुत अच्छा योग युक्त रहते हैं, उनकी पवित्रता संसार के लिए बल बन जाती है। तो हमें विश्व कल्याण करना है तो अपने को बहुत खजानों से भरपूर करना है। शांति मांगने आएंगे लोग, क्या हमारे पास शांति का भंडार है? क्या हम ही अशांत होते रहते हैं? और शांति का भंडार वैसे नहीं आएगा, योगयुक्त होने से आएगा। एक मिनट, जरा फोन आया, एक मिनट। हेलो, योग की शक्ति स्वयं में बहुत बढ़ानी चाहिए। अभी लोगों को खुशी खत्म हो जाएगी, खुशी लेने आएंगे लोग, टेंशन बहुत बढ़ जाएगी, मानसिक रोग तो इतने बढ़ जाएंगे कि परिवार में अगर पांच लोग हैं, चार लोग मानसिक रोगों से पीड़ित होंगे, और जो एक बचेगा वो उनकी सेवा करके रोगी बन जाएगा, ये हाल हो जाएगा। इसलिए जिनको विश्व कल्याण की सेवा करनी है, बिल्कुल बाबा के शब्द कहूंगा आपको, उन्हें 8 घंटे योग करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाई जी, एक ही क्वेश्चन है कि घर गृहस्थी में परिवार में रहते हुए मनसा सेवा को कैसे बढ़ाया जाए?
देखिए, उसके लिए योग और सुमान छोटी सी बात है। अगर आप भोजन बनाते अभ्यास कर रही हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो आपके पवित्र वाइब्रेशंस चारों फैल रहे हैं। अगर आप चलते फिरते ये अभ्यास कर रही हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो आपकी शक्तियों की किरणें चारों फैल रही हैं। तो जितना योग करेंगे, जितने सुमान में रहेंगे, मनसा सेवा स्वतः ही होती रहेगी। ठीक है बहने?
सभी संतुष्ट है। एक बल एक भरोसा, आपने इतना अच्छा स्ट्रांग सभी को मैसेज दिया। सब
ओम शांति भाई जी। अमृतराम मेडिटेशन जैसे कि एक दिन बहुत ही पावरफुल रहता है और दूसरे दिन वो इतना अनुभव नहीं होता, और तीसरे दिन जैसे कि हम पूरा जैसे एक्यूरेट चलते हैं श्रीमद पर, तो तीसरे दिन थोड़ा सा लगता है, मगर हर दिन जैसे कि पावरफुल हो, उसके लिए क्या करें?
मैंने अभी इस पे कुछ क्लासेज भी कराई हैं, नेट पे आ गई होंगी। एक तो रात का भोजन थोड़ा हल्का कर दें, नींद आपकी प्रॉपर हो जाए, सारा दिन भी अच्छा बीते ताकि दिन का कोई बुरा इफेक्ट मन पर ना आए। सवेरे उठ के ये बहुत जरूरी होता है, हम अपने को श्रेष्ठ संकल्पों से चार्ज करें। क्या बाबा ने मुझे दिया, आने वाले समय में क्या मुझे करना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरा भाग्य क्या है, ये हमें अपने को रिमाइंड कराना, उसके बाद योग करनी है। बाकी इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कभी बहुत अच्छा होगा तो कभी 50% होगा, कभी 80% होगा, इसमें न परेशान होना न ज्यादा सोचना है, ये चलता ही रहेगा। और धीरे धीरे अगर हम स्ट्रिक्ट दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो इसको पार कर लेंगे।
थैंक यू भाई, ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। भाई जी, पहले मैं आपके बताए हुए जैसे सुबह के टाइम पे जो करते हैं योग, वो आपके बताए हुए तरीके से करती थी, जैसे पहले सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में स्टेप वाइज। अभी रिसेंट आपके वीडियो आए थे, उसमें आपने बताया कि तीव्र जो करना है, जो ज्वालामुखी योग का तरीका आपने बताया था, कि सिर्फ परम धाम में बाबा को विजुअलाइज करके, और या चार मेथड आपने बताए थे एक क्लास में, वो मैं कर रही हूँ। तो वो सहज तो हो गया है, लेकिन लगता है वो बहुत इजी जैसा लगता है हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो डाउट आ रहा है।
दोनों करो, जो पहले वाला उसको भी चालू रखो और इसको उसमें जोड़ लो। ब्रेन की स्थिति रोज अलग अलग होती है, कभी ब्रेन किसी अभ्यास का आनंद लेता है तो कभी नहीं लेता है, इसलिए इसमें भी कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं। आपको जिस चीज में ज्यादा आनंद आए, जिस प्रैक्टिस में, वही कंटिन्यू ज्यादा करो।
मेरा नोज में तो दोनों तरफ गांड हुए, तो इससे मेरे को रात में 2-3 बजे तक नींद नहीं आती। इसमें सवेरे अमृत वेले में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको दवा का असर भी नहीं हो रहा है इसमें, तो हम कैसे संकल्प से, कैसे योग मेडिटेशन से इसको ठीक करें?
अब आपको लिखना पड़ेगा या कहो कोई आपके लिए लिखे, सोने से पहले लिखो कोई, जिनको नींद नहीं आती और गड़बड़ हो रही है जीवन में, सोने से पहले 108 बार लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ, एक विधि। दूसरा के संकल्प करो जिन आत्माओं को मैंने कष्ट दिया हो पूर्व जन्मों में उनसे मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांग। तीसरा, अपने ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी दो सोने से पहले। विधि आपको बताई है, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, 2-3 बार करके हाथ से रख दो, 1 मिनट के लिए ऐसा 10 बार कर दो। ये 3 विधि आप अपनाएंगी, बाकी एक अव्यक्त मूल्य रोज पढ़ो, थोड़ा स्पिरिचुअली दिन में अच्छा अभ्यास करो और ये परेशानी मन से निकाल दो कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। ठीक है, जब जगे हैं तब अच्छा पुरुषार्थ कर लो और धीरे धीरे ये सब करने से आपकी नींद भी रेगुलर हो जाए। ओके, बस बहन जी,
मेरा जो है, मैं जब योग करती मेरा खुद का फेस उजला सूक्ष्म वतन में दिखता और एकदम उजला उजला और चमकता हुआ, यही फेस ऐसा। इसमें मेरे को डाउट है ये क्या है, फरिश्ता
नहीं? कोई बात नहीं, ये आपका फरिश्ता रूप।
मेरा अपना यही फेस उजला उजला और रुकती में चमकी एकदम चमक ऐसी दिखती, लेकिन मैं उतनी पुरुषार्थ नहीं करती, डेली मैं क्लास अटेंड करती, ज्यादा योग भी नहीं करती और ऐसा मेरे को और जल्दी योग लग जाता। विद इन 9 सेकेंड संकल्प करी जब ही बाबा सामने आ जाते।
ठीक है, बहुत अच्छा है। ये बाबा आपको आपका अच्छा स्वरूप दिखा रहे हैं, आप अच्छा पुरुषार्थ करो, ये स्थिति आपकी बन जाएगी।
अच्छा, थैंक यू।
चलो बस बहन जी, ओम शांति।
का अभिनंदन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, जब मुझे और काम करना है जरा। सन्नी
जी, जी।
सभी भाई साहब ने बहुत अच्छी क्लास कराई, एक बल एक भरोसा पर सबके प्रश्नों के भी बहुत अच्छा वो सब उत्तर दिया है भाई साहब ने। अभी हम थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा योग करेंगे, लेकिन वो भी बहुत क्रिएटिव योग करेंगे।